नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को शुरुआती कारोबार में अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 9.50% नीचे आ गया। बीएसई पर अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1597.95 रुपए पर कमजोर खुलने के बाद और गिरकर 1433.60 रुपए पर आ गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 9.50% की गिरावट को दर्शाता है। बाद में ये 6.54% की गिरावट के साथ 1480.65 रुपए पर कारोबार कर रहा था। अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी विल्मर के शेयर बीएससी पर 5% के नुकसान में कारोबार कर रहे थे। वहीं अडानी ट्रांसमिशन 10% नीचे आ गया। दूसरी ओर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 0.53% की बढ़त के साथ 501.50 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा अडानी समूह से जुड़ी अन्य कंपनियों अंबुजा सीमेंट्स में 3.28%, ACC में 0.82% और NDTV में 4.98% की गिरावट आई। अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर धोखाधड़ी वाले लेन देन और शेयर की कीमतों में हेर फेर का आरोप लगाया गया था। उसके बाद से समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि वो सभी कानूनों और खुलासा अनिवार्यताओं को पूरा करता रहा है। वित्त मंत्री हरीश राव के अनुसार 2015-16 से 2020-21 के दौरान सालाना आधार पर 12.60% की दर से बढ़ा तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 2013-14 के 1,12,162 रुपए से बढ़कर 2022-23 में 3,17,115 रुपए पर पहुंचने का अनुमान है। रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद जनवरी में लगातार चौथे महीने पश्चिम एशिया के परंपरागत आपूर्तिकर्ताओं से अधिक रही है। रिफाइनरी कंपनियां लगातार छूट पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल की खरीद कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले भारत के आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी। ऊर्जा खेप पर निगरानी रखने वाली वाटेक्सा के अनुसार जनवरी में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात बढ़कर 12.7 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस तरह भारत के आयात में रूसी कच्चे तेल का हिस्सा बढ़कर 28% हो गया है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पश्चिम के प्रतिबंधों के बाद रूसी तेल रियायती कीमत पर उपलब्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत के आयात में रूसी कच्चे तेल का हिस्सा केवल 0.2% था। जनवरी 2023 में ये बढ़कर 28% हो गया है। यहाँ इंडिया एनर्जी वीक 2023 में भाग लेने आए अधिकारियों ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस सहित दुनिया में कहीं से भी कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। अमेरिकी मुद्रा में मजबूती तथा घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट के रुख के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 42 पैसे टूटकर 82.50 प्रति डॉलर पर आ गया। फॉरेक्स डीलरों ने कहा कि विदेशी कोषों की सतत निकासी और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती से भी रुपये की धारणा प्रभावित हुई है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.35 प्रति डॉलर पर कमजोर खुलने के बाद 82.50 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर आ गया। ये पिछले बंद स्तर की तुलना में 42 पैसे की गिरावट है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में शुक्रवार को रुपया 42.08 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.17% की बढ़त के साथ 103.09 पर पहुंच गया। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से अधिक टूट गया। कारोबारियों ने कहा कि इसके अलावा रुपए की कमजोरी से भी बाजार की धारणा प्रभावित हुई। बीएससी का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 203.71 अंक या 0.33% के नुकसान से 60,638.17 अंक पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64.05 अंक या 0.36% के नुकसान से 17,790 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में इन्फोसिस में सबसे अधिक 1.31% की गिरावट आई। हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, नेस्ले इंडिया, एचसीएल टेक, कोटेक बैंक और टीसीएस के शेयर भी नुकसान में थे। वहीं दूसरी ओर एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईटीसी, L&T, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व और HDFC बैंक के शेयर बढ़त में थे। पिछले कारोबारी सत्र में शुक्रवार को सेंसेक्स 909.64 अंक या 1.52% की बढ़त के साथ 60,841.88 अंक पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 243.65 अंक या 1.38% की बढ़त के साथ 17,854.05 अंक रहा था। भारत अधिक से अधिक सस्ता रूसी तेल खरीदकर इसे आगे यूरोप और अमेरिका को दे रहा है। फिर भी कुछ देश भारत की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से रूस के ऊर्जा राजस्व को कम करने में उन्हें सफलता नहीं मिल रही। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में बड़ा बदलाव आया है। यूरोप ने रूस पर प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में भारत ग्लोबल ऑयल मार्केट में सेंटर बनता जा रहा है। वॉशिंगटन थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के बेन काहिल का कहना है कि अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारियों के दो मुख्य लक्ष्य हैं, बाजार को अच्छी तरह से आपूर्ति मिलती रहे और रूस का तेल राजस्व कम हो जाए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।